माँ बाप जननी गतिम। इसीलिए उस जातुधानी ने भी, उस राक्षसी ने भी स्वर्ग प्राप्त किया। भगवान के धाम को स्वर्ग कहा गया है, कई बार भागवत में वर्णन है, और उसी स्वर्ग की विशेषता बता रहे जननी गतिम, जो जननी का पद है, जो जहां जननी का चलना फिरना रहता है, गति जहां वो रहती है, या गति का अर्थ स्वरूप भी होता है, जननी की गति पर, जिस मां ने जसोदा ने जन्म दिया था, या जननी शब्द पर ध्यान देना चाहिए, जिसने जन्म दिया है भगवान को, उसको जो सुख मिलता है वह सुख भगवान ने दिया पुतना को। और स्वर्ग शब्द इसीलिए दिया गया है, स्वर्गम सुख पदावहम, सुख बहुत है, अनंत अनंत सुख है भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में, इसीलिए उसको स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग शब्द देने का एक यहाँ एक कारण है, अति आनंद है वहां, अति आनंद है। तो जो सुख माँ जसोदा को मिलता है कृष्ण को दूध पिलाकर, खिलाकर, पिलाकर, सहला करके, वह सुख दिया भगवान ने, अब वह नित्य माँ बन गई भगवान की। तो ये अद्भुत स्वभाव है भगवान का। तो प्रकट रूप से भी पुतना के देह को इस तरह से समालिंगित करके, समाक्रमित करके और पिए थे, इसी कारण से उसका देह दिव्य हो गया था, उसे सुगंध निकली थी, और यही कारण है कि भगवान ने इस तरह से उसके देह को भी दिव्य बनाया और उसके आत्मा को अपनी माँ बना लिए, धात्री गति दिए। यही कारण है कि उद्धव जी जब विरह में भगवान के होते हैं, तो विरह के समय भगवान की यह लीला उन्हें बार बार बेचैन कर रहे थे। तो विदुर जी से रोते हुए इसी वृंदावन में जमुना जी के तट पर कहते हैं, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघान सया पाया यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कम वा दयालुं शरणं ब्रजे मा। कौन ऐसा दयालु है जो स्तनों में कालकूट विष लगाकर मारने आई थी और उसको धात्री गति दिया भगवान ने, ऐसा दयालु कौन है? भगवान के विरह में भगवान के गुणों का स्मरण कर रहे हैं उद्धव जी। और हमने ऐसा सुना है महात्माओं के मुख से कि सुखदेव गोस्वामी को कृष्ण भक्त बनाने में इस श्लोक का हाथ, इस लीला का हाथ, तो भगवान के सौंदर्य और भगवान के कृपा की गाथा सुनकर सुखदेव गोस्वामी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को तिलांजलि दे दिए और भगवान में आसक्त हो गए। बरहा पीडम नटवर बपु, यह श्लोक और ये श्लोक, अहो बकीयम स्तन कालकूट, प्रारंभ में ही भगवान अपनी कृपा को इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे भक्तों का मन भगवान के इस कृपा गुण में त्रिषित हो जाए, ललायित हो जाए, लालच में आ जाए कि ओहो कृष्ण इतने मधुर हैं, इतने कृपालु हैं, क्यों नहीं हम कृष्ण के हो जाए, हम क्यों नहीं कृष्ण को दें अपना यह मान, अपना तन वचन और अपना धन, अपना स्वजन सब कुछ। सुखदेव गोस्वामी इसीलिए आगे चलकर कहते हैं कि कृष्ण में सुतेक्षणम कुर्वती नाम, कृष्ण मेरा प्राण प्रिय पुत्र है, यह भाव कर रही थी ब्रज की गोपियां, वात्सल्य भाव वाली गोपियां और गौवे, तो न विद्यते ते साम्राज संसारो अज्ञान संभव, उनका संसार संसार नहीं था, वही दिव्य वैकुंठ था, वे सब गृहस्थ थे, उनके उन स्त्रियों के पति थे, पुत्र थे, और पति पुत्र घर सब कुछ था, देह था, तो देह बंधन नहीं कर रहा था, कभी कर ही नहीं सकता है। ब्रह्मा जी ने भी कहा तावत कारा गृहम गृहम तावन मोहन घृणिगडो, तो वे कहते हैं कि तभी तक ये स्वजन आदि बाधक है यार, घर गृहस्थी बाधक है, जब तक हे कृष्ण जीव आपका नहीं हो जाता है। तो ब्रज के जितनी भी माताएं हैं उनके साथ जो कुछ भी देह पति और पुत्री, चार जो हैं यही किसी स्त्री के लिए संसार कहे जाते हैं, इनमें जो आसक्ति है वही संसार है, वही जन्म मृत्यु में किसी जीव को डाल डाल देते डाल देती है आसक्ति। लेकिन ब्रज की जो माताएं हैं, चाहे गौवे हों या गोपियां हों, वात्सल्य भावती जो कृष्ण को अपना पुत्र मान रही हैं, सुतेक्षणम कुर्वती नाम सुखदेव गोस्वामी का शब्द है। तो उनका देह क्या था, क्या देह, देह में उनकी आसक्ति थी लेकिन देह क्या था, देह के रस को दूध को भगवान पी रहे थे। क्या वह देह कभी बंधन करने वाला हो सकता है, जिस देह के दूध को कृष्ण पी रहे हैं। तो देह इस तरह से धन्य था। अस्तन्यामृतम कृष्ण पीबती, उनके स्तन्य, अस्तन्य कहते हैं अस्तन से निकले हुए पदार्थ को, स्तन्य मतलब दूध को, स्तन से निकले हुए दूध को स्तन्य कहा जाता। वह अमृत है, दिव्य है, तो उनके देह से अमृत निकलता था वो दूध, और उसको कृष्ण पी रहे थे। तो देह कैसे बंधन कारक होगा, तो देह इस तरह से सार्थक था। गेहे कृष्ण खेलती, और उनका घर कैसे बाधक हो सकता था, जिस घर में कृष्ण खेलते थे। संसार में तो बहुत मंदिर बनते हैं लेकिन वहां भगवान पत्थर के रूप में खड़े रहते हैं, कभी खेले हैं, कभी बोले हैं, कभी कीचड़ में लेटे हैं, तो होता नहीं है। लेकिन ब्रज के गोपियों के घर में तो भगवान घूमते हैं, चोरी करते हैं, खाते हैं, तो घर कैसे बंधन कारक हो सकता है। वही घर तो वास्तविक घर है जीव का, वास्तव में जिसमें भगवान खेलते हैं, और पति, पति जो वही खास भगवान का पिता है। जब माताओं का दूध पी रहे थे कृष्ण बछड़ा बन करके या बालक बन करके, तो उस समय जितने भी पति थे उन माताओं के, उन स्त्रियों के, तो वे सब कृष्ण को अपना पुत्र मान रहे थे और अपने साथ बैठाते थे, खिलाते थे, सुलाते थे, नहलाते थे। अलग अलग रूप तो अलग अलग नाम था बच्चों का, लेकिन सब थे कृष्ण। तो ऐसे पति में यदि किसी की स्त्री का प्रेम हो तो क्या ये बंधन है, जो पति कृष्ण को अपना पुत्र मान रहा है, ये बंधन कैसे हो सकता है। अच्छा, पुत्र के जहां बंधन का सवाल है, तो पुत्र तो स्वयं भगवान, तो ऐसे भगवान में ममता धिक्य हो, लाखों लाख गुना ममता हो, तो यही तो होना चाहिए। इसीलिए ब्रजवासियों के विषय में ब्रह्मा जी का उद्गार या यहां पर सुखदेव गोस्वामी का उद्गार जो है दिया गया, केवल कृष्ण उनके मन में बसे हुए। तो यहां सुखदेव गोस्वामी यह कह रहे हैं, पूतना के अंगों को भगवान ने आक्रमित करके पिया, इसलिए वो जननी गति पा गई। तो फिर कृष्ण भुक्त स्तनक छीरा किमु गावो नु मातर, बारम्बार किम नु कह रहे हैं। फिर भगवान गौओं को और अपनी माताओं को क्या देंगे, उनको क्या पद मिलेगा, क्या होगा। इसका अर्थ है कि दिव्य प्रेम का सुख देंगे, भगवान के पास भी अद्भुत सुख है। किसी को अपना प्रेम दे दे तो उस पुरुषार्थ के आगे चारों पुरुषार्थ तृण के समान, जार आगे तृण तुल्य चार पुरुषार्थ। ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं देते हैं, वास्तव में बहुत बड़े दानी हैं, देते हैं तो उतना कोई नहीं दे सकता। देने के लिए वे चैतन्य महाप्रभु बनकर आए, तो रूप गोस्वामी पाद पहचान गए। उनसे जब प्रयागराज में भेंट हुई और इसके पहले भी, तो वे पहचान गए। उनको प्रणाम करते समय कहते हैं, कैसे है पहला शब्द, नमो महावदान्याय, यही पहले कहे, हे महादानी आपको प्रणाम है। तो ये कंगाल सन्यासी क्या दान कर रहा है, एक प्रश्न उठ सकता है ना। भगवान ने कहा होगा कि अरे मैं मधुकरी करके खा रहा हूं और हमको महाबदान एक महाविद्वान कह रहा है, एक मिनिस्टर, एक राजनेता, इतना पढ़ा लिखा और महाबदान ने कहा। भगवान ने कहा क्यों ऐसा अन्याय कर रहे हो, तो ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं महाबदान्य हो गया, महाभिक्षुक, महाभिक्षमंगा, और इसको महाबदान ने कह रहे हैं। रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं, नहीं मैं पहचान रहा हूं, नमो महाबदान न्याय। तो क्या मैं महादान कर रहा हूं, कृष्ण प्रेम प्रदायत, आप कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा दान यही है। मैं कृष्ण प्रेम कैसे दे सकता हूं? कृष्ण प्रेम तो कृष्ण दे सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु चौंके, कृष्ण प्रेम तो कृष्ण दे सकते हैं। तो कहते कृष्णाय, आप कृष्ण हो, आप कृष्ण है, मैं पहचान रहा हूं। तो भगवान कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण तो सांवले हैं, कृष्ण सांवले हमको क्यों कृष्ण कह रहे हैं? तो कहते कृष्ण त्विसे, केवल कांति भर आपकी कृष्ण नहीं, अकृष्ण त्विसे, गौरत्विसे, 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 आपकी कांति गौर है लेकिन आप कृष्ण हैं। इस तरह से रूप गोस्वामी पद वर्णन करते, मैं पहचान गए। भगवान कितना भी छिप करावे लेकिन उन अपने भक्तों से नहीं छिप सकते, वो पहचान लेते हैं। रूप गोस्वामी पाद ने पहली भेंट में भगवान चैतन्य महाप्रभु का पर्दाफाश कर दिया कि आप कृष्ण हैं, भले आप कुछ भी जबरदस्ती कहें कि कृष्ण का दास हूं, लेकिन हम नहीं मान सकते हैं। और कोई भी अभिज्ञ व्यक्ति नहीं मानेगा, जो सुधीय सुंदर बुद्धि वाले होते हैं वो तो पहचान लेते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण प्रेम का दान करते हैं, वो आए प्रेम का दान करने के लिए। ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान ब्रजवासियों को नहीं दे पाएंगे, गौओं को नहीं दे पाएंगे। अरे वो इतना देते हैं कि क्या कोई उनको देगा, वो देते हैं तो निहाल कर देते हैं, वो अपना प्रेम देते हैं। क्या माँ यशोदा को उन्होंने कम दिया, अपने को पुत्र बना करके दे दिया है, चाहे बांधो, चाहे थप्पड़ मारो, चाहे कुछ भी करो, खाने को दो, चाहे डहकाओ, कुछ भी करो, भगवान तैयार है। बांध दिया तो बांध दिया, भगवान में अपने से खोलने की शक्ति नहीं है। लड़के पास में आ रहे थे और कृष्ण सबके सामने रो रहे थे ऐसे मुंह लटकाए हुए, तो बलराम जी आए। बलराम जी कहते हैं तुमको मैं बारंबार कहा कि चोरी मत करो, तुमको मैं कई बार कहा। तो उस समय तो हमारी शिकायत करते थे कि ये दाऊ हमसे बैर कर रहा है, कई बार कहा कि इस तरह की बदमाशी मत करो, उद्धम मत करो, तो अब अपना कर्म फल भोगो, अब हम क्या करें। और कृष्ण के आंख से आंसू गिर रहा है, वैसा अपराध किया, बंध गया, कोई नहीं खोल रहा है, बड़ा भाई भी इस तरह बोल रहा है, अब क्या करें। दूसरे बच्चे तो डरते थे, कहते थे हम क्या करें, हम तो यशोदा जी के दासी के लड़के, हम नहीं खोल सकते। जो पता चल जाएगा कि ये खोला है तब तो हमको वर्षों तक बांध देगी। भाई रानी ने बांधा है तो कौन खोले। बलराम जी कुछ जोर लगाने लगे, अब उनको कृष्ण का बंधन देख करके भगवत आवेश होने लगा, हम खोल देंगे, हम खोल देंगे, जोश आने लगा। तो खोलने का साहस नहीं हो रहा था लेकिन बात बहुत ऊंची ऊंची बोलने लगे, कौन बांधा है, कौन बांधा है, पता है कृष्ण क्या है। तो माँ यशोदा तो घर का काम कर रही थी, सुन नहीं रही थी, लेकिन जोर जोर से आवाज होने लगी तो बाहर आई, तो कौन बोल रहा है। बलराम जी कहते मैं बोल रहा हूं, कौन बांधा है इसको, तुमको पता है कृष्ण क्या है। तो माँ यशोदा ने कहा अरे तुम क्या हो, कृष्ण क्या है, पता है, पता है, तुम क्या हो। मैं क्या हूं, मैं संकर्षण हूं, मैं शेष नाग हूं, मेरे एक फूंक से सारा ब्रह्मांड जल जाता है, अभी ब्रज को फूंक दूंगा, खोलो नहीं तो, अभी फूंक दूंगा। अच्छा, तो मां हंसने लगी और कही और कृष्ण क्या है, यही नारायण है, यही भगवान विष्णु है, यही जगत का पालन करता है, यह नृसिंह अवतार लिया, हिरण्यकश्यपु का वध किया, यही रावण का वध किया, यही राम रूप में अवतार लिया था, ये मत्स्य अवतार धारण किया, तुमको पता नहीं है, ये तीन पग में पृथ्वी नापा था, ये इतना बड़ा है। तो माँ ने कहा तो अब क्या कर रहा है, सब हिरण्यकश्यपु का वध किया था, अब क्या कर रहा है, तो तुमको पता नहीं है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, कृष्ण ये अवतार थे, ये अवतार थे। तो माँ ने छड़ी उठाया और कहा कि सभी अवतार मेरे ही घर में आ रहे हो, और दूसरे का घर नहीं है, कोई दूसरे का घर नहीं है क्या अवतार लेने के लिए, मारते मारते ठीक कर देंगे। तो बलराम जी भाग गए, अब क्या करें। और नंद बाबा वहां थे नहीं, वे काम करने के लिए खेत पर गए हुए थे बाहर, और कौन खोले। तो फिर बलराम जी आए और वो लगे कहने हम क्या करें लेकिन अब से तुम चेत जाओ, आज से चोरी मत करो, ये मटका मत फोड़ा करो, नहीं तो इस बार तो बांधी ही है, उसके बाद पीटेगी। लेकिन कृष्ण ऐसे रुहासा मुंह किए थे कि लगता था कितनी बड़ी विपत्ति में फंसे, और वास्तव में ये क्या कम विपत्ति है, किसी बच्चे को बांध दिया जाए उखल से या कहीं से और उसको खेलने नहीं दिया जाए, कोई खाने के लिए नहीं ले जा सकता था, साहस नहीं था कि चलो बंधा है तो कोई फिर माखन का लोंदा दे दे कि चलो बंधे बंधे खाते रहो, खाने का अधिकार नहीं था क्योंकि उसने दही बहाया था, माखन छीटा था, इसलिए माने कहा अभी खाने को नहीं दूंगी और खेलने नहीं दूंगी, चलो तुम उद्यम करो। तो यह सौभाग्य माँ को दिया था। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है नायम सुखापो भगवान देहि नाम गोपिका सुत, भगवान इस तरह से सुख पूर्वक दूसरे लोगों को नहीं मिल सकते हैं जैसे माँ को मिले हैं, जैसे यशोदा को मिले हैं, तो वे बहुत बड़ा दान करते हैं भगवान। तो कोई भी व्यक्ति जो कुछ देता है भगवान को, उसके उस दत्त वस्तु को भगवान कई गुना बना करके देखते हैं, ये उनका स्वभाव है। और पयान सिजासाम अपिबत पुत्र स्नेह स्नुतान्यलम, जिनके पयांशु पयांशी, यह पया शब्द नहीं है, पयांशी बहुवचन में है, जिनके दूधों को कृष्ण ने पिया है, बार में कई गौवे हैं इसलिए दूध बहुवचन में है, अथवा ये कहीं गाय के दूध को या माँ के दूध को कई तरह से पीते थे, माँ के गोद में बैठ करके, माँ जसोदा से भिन्न और भी माताओं को कह रहे हैं, यहाँ माँ जसोदा की चर्चा नहीं की जा रही है, जासाम शब्द है बहुवचन में, जिनके दूध को कृष्ण ने पिया, कैसा दूध, पुत्र स्नेह स्नुतानी, मेरा पुत्र पी रहा है, पीने वाला है, भूखा है, इस भाव से उन माताओं के अस्तन से दूध स्वयं ही स्नेह के कारण चूता रहता था, स्नेह स्नुतानी, स्नेह से दूध चुचवाता रहता था, चूता रहता था, और कृष्ण पीते थे अलम, अलम कृष्ण के पीने के लिए कहा गया है, और स्नुतानी कहा गया है माताओं के प्रति स्नेह, तो उनको पिलाने की ललक और कृष्ण को पीने की ललक, तो दोनों ओर से संजोग बैठा था, कृष्ण की अति लालसा थी पीने की, पीते रहते थे बारंबार, दिन में सैकड़ों बार पीते थे, बच्चों की राजी होती है और माँ के छाती पर जब चाहे दूध पीना पीने लगते, थोड़ी सी चेष्टा करते हैं तो माँ समझ जाती है कि अच्छा पीना चाहते हैं, तो आंचल से मुख ढक करके पिलाने लगते, तो बच्चे के भाव को समझते, तो भगवान स्वयं चेष्टा करते थे, ऐसा नहीं कि माँ जब पिलाने आवे तब पिएंगे। उखल बंधन लीला के शुरू में कहा गया कि भगवान निद्रा से उठ करके जा करके माँ के गोद में चढ़कर पीने लगे, तो पीते थे बहुत ललक से, तो भगवान भी जिनका स्तन पी रहे हैं ललक से और जिनके स्तन में स्नेह का दूध चर रहा है, उनको भगवान क्या देंगे, उनकी क्या गति होगी, बताइए, भगवान तो सदा ऋणी रहेंगे। तो भगवान देवकी पुत्र, देवकी का अर्थ यशोदा, दो नाम था यशोदा का, एक देवकी और यशोदा, तो देवकी के पुत्र भगवान वैसे तो सब कुछ देते हैं, कैवल्य देते हैं और धर्म अर्थ काम सब कुछ देते हैं, जो लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए कृष्ण का भजन करते हैं उनको स्वर्ग भेजते हैं, यज्ञ रिष्टवा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ति, स्वर्ग की प्रार्थना करते हैं तो उनको भगवान स्वर्ग देते हैं, और जो लोग धन चाहते हैं भगवान धन देते हैं, जैसे ध्रुव महाराज को दिए, या काम इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं उनको भगवान काम देते हैं, धर्म का अर्थ है स्वर्ग, और काम जैसे कर्दम जी ने स्त्री चाहा तो भगवान ने स्त्री दिया, या और भी बहुत सुख की सामग्रियां, और जो मुक्ति चाहते हैं उनको मुक्ति देते हैं, और भगवान के रूप में हैं तो भक्तों को अपना पार्षदत्व देते हैं वैकुंठ में। लेकिन जो कृष्ण को दूध पिला रही हैं बड़े ललक के साथ स्नेह के साथ, और कृष्ण जिनका दूध पी रहे हैं उनको कृष्ण क्या देंगे, यही देंगे कि नित्य ही दूध पीते रहेंगे, यही सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा सुख उन माताओं को यही देंगे। ये बहुत बड़ा सुख है। इस संसार में भी प्राकृत माताओं में भी देखा जाता है, अपने बच्चे को दूध पिला करके उसे जिस सुख का अनुभव होता है वह एक अद्भुत सुख है। यदि बच्चे को छाती का दूध पिलावे और बच्चा सोने लगे फिर सुला दे तो बच्चे का स्मरण करके भी सुख होता है, और बच्चा पीता है तभी भी सुख होता है। और फिर श्री कृष्ण परब्रह्म सच्चिदानंद विग्रह भगवान जिसके गोद में हूं और दूध पी रहे उसको कितना सुख प्राप्त होगा। कोई ये बातें सब हम लोगों की प्राकृत कल्पना से बाहर है। तो ये भगवान सुख देते हैं। तो तासाम अविरतम कृष्णे कुर्वती नाम सुत क्षणम सुत इक्षणम सुत दृष्टि। तो वे गोपियां और वे गौएं कृष्ण में हमेशा सर्वदा अविरतम सुतेक्षणम कुर्वती नाम पुत्र बुद्धि करते थे। कृष्ण मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है, भूखा है, गाय चराने गया है, ये करने गया है, वो करने गया है। गाय चराने से पहले की बातें हैं, खास करके जब स्तन पीते थे। अविरतम और अविरतम शब्द आगे की लीलाओं में भी सूचित कर रहा है कभी ऐसा समय नहीं आएगा जब इन माताओं का दूध कृष्ण नहीं पिएंगे, इनके लिए वे सदा बच्चे हैं। जैसे राधा रानी के लिए हमेशा किशोर अवस्था के हैं, वैसे गोपियों वात्सल्य भावमयी माताओं के लिए वे हमेशा बच्चा है। और उनका सुतेक्षणम सुत दृष्टि निरंतर रहता है। तो उनका जो उनको उनके लिए संसार संभव ही नहीं। कोई इस कथा को सुनकर कहेगा अरे जैसे दूसरे लोग संसार में आसक्त रहते हैं ऐसे ये भी तो मेरा बेटा ये तो बहुत आसक्ति है। तो इसी पर सुखदेव गोस्वामी कहते उनके लिए संसार नहीं है। संसार में जैसे दूसरे लोग अपने पुत्र परिवार आदि में आसक्त रहते हैं यह हुआ आसक्ति नहीं है। यह तो मुक्ति से भी बढ़ करके कोटि कोटि मुक्ति से भी बढ़ करके जीव का स्वरूप है। यह भगवान की लीला है इस जगत में आकर के इसको दिखा रहे, ये जीव का लक्ष्य। तो ये कथा कहकर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कट धूमस सौरभ्यम अवग्राय ब्रजोक्ष। जब नंद बाबा और भी गोप आए या और भी ब्रजवासी जो थे, जब कट का अर्थ होता है सौ लाश, जब सौ जलाया गया पुतना का तो उससे जो धुआं निकला तो उसको अग्राय सब लोग सूंघने लगे। इतनी दिव्य सुगंध थी कि सब लोग सूंघ रहे थे। अग्राय और उसको सूंघ करके किमिदम ये क्या है, कुछ दूर से लोग धुआं सूंघ रहे थे और निकट वाले तो आग लगी तो लोग जला करके अब भागे। वो सोचे कि इसके गंध को कौन बर्दाश्त करेगा, वो लोग दूर चले गए। लेकिन जब वो धुआं निकला तो उस धुआं को सब लोग सूंघने लगे और आपस में बात करते हैं कि भी दमी क्या चीज है, कहीं पाताल से बलि महाराज के यज्ञ से धुआं आ रहा है, क्या हो रहा है। चक्रवर्ती बाजी अर्थ करते हैं कहीं से पृथ्वी को फोड़ करके कोई धुआं निकल रहा है, इतना सुगंधित धुआं कैसे निकलेगा, इतनी बृहद मात्रा में ये धुआं कैसे निकलेगा। हम लोग तो अगरबत्ती जलाते हैं तो एक पतली लकीर धुआं निकलती, वो भी डिस्टर्ब कर दी आंख को, है ना, आंख में लगती है। कभी कभी बाहर करते हैं अगरबत्ती बाहर हटाइए रूम से, लेकिन वो तो विशाल छ कोस में धुआं निकल रहा है तो सारे ब्रज में भर रहा है, ऊपर जा रहा है, हो रहा है। तो सोचते कहीं पाताल से या सूतल लोक आदि से इतनी बृहद मात्रा में कोई अगुरु जलाया गया है तो उससे धुआं निकल रहा है, क्या हो रहा है कि मिदम। पहले तो ये लोग पूछ रहे हैं कि क्या है, ये पता नहीं है कि उसके देह से धुआं निकल रहा है। तो किसी को भ्रम हुआ कि कहीं चंदन की लकड़ी तो उसमें नहीं डाल दी गई थी कहीं बन से। इस तरह से बेचारे गोप गोप हैं और वे कभी भी ये नहीं अनुमान कर सकते थे कि उसके देह से धुआं निकल रहा है, इतना सुगंधित धुआं। तो आपस में कहते कि मिदम कुत वा कुत एवित, ये क्या है और कहां से आ रहा है, ये निर्णय नहीं कर पाए। कहां से आ रहा है धुआं, किस स्वर्ग से धुआं फैल गया, देवता लोग के यहां ऐसी सुगंध होती है वहां से फैला होगा या पाताल से आ रहा होगा, ये कहां से इतना सुगंधित धुआं निकल गया। प्रकट देख रहे हैं कि धुआं निकल रहा है पुतने के देह से, लेकिन उसको वो सुगंधित नहीं मान रहे हैं। ये सुगंध जो है सोचते हैं कहीं पाताल से धुआं निकल रहा है चाहे स्वर्ग से आ रहा है या जो कुछ भी हो कहीं दूसरी जगह से, इति बदंतो ब्रज माया, यह कहते हुए ब्रज में आए। बदंतो ब्रज माया हुई और सुखदेव गोस्वामी से पूछा जाए क्या वे जान गए कि पुतना के देह कहीं धुआं था, तो सुखदेव जी इस विषय में चुप है, कुछ नहीं कहे। इसका अर्थ है वे लोग अब इसके बाद चर्चा ही नहीं किए। चर्चा चलने लगी अब यह कि एक राक्षसी आई थी, कृष्ण को लेकर के भाग गई थी, बच्चे को लेकर भाग गई थी, लेकिन बच्चा बिल्कुल बच गया और मर गई। अब कौन धुआं की चर्चा करे और ये करे, और जो केवल बच्चे की चर्चा होने लगी। ते तत्र वर्णितम गोपय पूतना गमनादिकम, नंद बाबा के दल में जो गोप थे उनके प्रति और गोपों ने कहा कि अरे यहाँ पूतना आई थी। तो वे गोप लोग ते तत्र वर्णितम गोपय ही, देखिए प्रश्न उधर हो रहा था कि किमिदम कुतय वही थी, ये क्या है और कहां से आ रहा है। तो वे लोग गए अन्य गोपों के साथ जो लोग जलाए थे एक जगह जुट करके, भाई इतनी बड़ी घटना हुई थी पूतना की, तो सब लोग आपस में यही बात कर रहे थे, रे बाप इस तरह से भागी, ऐसे दांत से, ऐसे ये थे वो थे, चारों तरफ केवल कृष्ण कथा हो रही थी और जिसमें पूतना गमनादिकम पूतना के आगमन की कथा ही श्रेष्ठ थी। आदिम का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है और आदि का अर्थ शुरुआत भी होता है। पूतना के आगमन की कथा मुख्य थी, इस तरह से ऐसे आई पूतना के आगमन की कथा से मतलब है, अरे वो इतनी सुंदरी बनकर के आई थी, ऐसी स्त्री तो हमने देखा नहीं था। गोपियां भी बात करती थी और गोप भी बात करते थे, और इसके बाद देखते 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 एक राक्षसी के रूप में गिर गई इस ब्रज। बाद में उन लोगों ने अनुमान कर लिया था कि वही गिरी थी। तब लोग कहते पूतना आगमन आदिकम वहां से चालू की और श्रुत्वा तन निधनम, और लास्ट में उसका निधन सुने। जब आगमन सुने नंद बाबा, जब आगमन सुने तो बड़े चकित हुए और बड़े डर गए कि ऐसे आई कृष्ण को लेकर भाग गई, बच्चे को लेकर के भाग गई, तो तुरंत उसके निधन का वर्णन किए गोप लोग। नंद बाबा का के हृदय पर बहुत शोक ना छा जाए तो इसलिए वे निधन का वर्णन किए, और इसके साथ ही साथ शिशो स्वस्ति बच्चे के बिल्कुल बाल बाल बच जाने का वर्णन किए, उसके कल्याण का वर्णन किया, बच्चा को कुछ नहीं हुआ भगवान की दया से। वैसे उसको पूछ फिराया गया, गाय का गोबर का तिलक किया गया, भगवान की बड़ी कृपा है नारायण की, बच गया, बिल्कुल बेदाग बच गया, भगवान को धन्यवाद है। नंद बाबा हाथ जोड़कर कहते सब प्रभु की दया है, हमारा बच्चा बच गया, भगवान बहुत दयालु है, ये है वो है से। और विस्मित हुए, बहुत विस्मित हुए। नंद स्वपुत्र मादा, इसके बाद उनको व्याकुलता थी, नंद बाबा को कहाँ है बच्चा, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है, गए और स्वपुत्रम आदा है, अपने पुत्र को। ये सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं शब्द, नंद बाबा अपने पुत्र को गोद में लिए, वो वसुदेव जी के पुत्र ऐसा नहीं कह रहे, क्योंकि नंद बाबा के यहां भी कृष्ण जन्म लिए थे। तो स्वपुत्रम आदाय प्रेत्य आगतम उदार थी, बड़ा उनका उदार मन हुआ, मन बहुत प्रसन्न हुआ, वे लगे दान देने फिर लोगों को, ये अर्थ है यहाँ। और मूर्धनी उपाघ्राय, यह एक विशेष स्नेह का सूचक, अपने बच्चे को गोद में रह करके उसका सिर सूंघ है और सिर सूंघ करके सर्वाधिक आनंद प्राप्त किए, परम मुदम लेभ है हे कुरुद्वह, जैसे आपकी रक्षा हो गई ब्रह्मास्त्र से, तो परीक्षित युधिष्ठिर महाराज आदि आपको गोद में रखकर सिर सूंघ करके सुखी होते थे, उस तरह नंद महाराज बहुत सुखी हुए। ये कथा सुन करके जरूर मन में इच्छा होगी कि हमको भी भगवान के धाम में जननी गति मिले या उनमें प्रेम हो कम से कम। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस कथा को जो श्रद्धा से सुनता है उसको भगवान कृष्ण में प्रेम प्राप्त होता है, केवल सुनने मात्र से। ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकम अद्भुतम श्रृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। यह जीव यह मनुष्य मरण धर्मा है, कभी भी मर जाएगा इस संसार में, मर्त्य, लेकिन मर्त होकर के भी कोई यदि श्रद्धा से इस कथा को सुनता है और कहता है क्या कथा पूतना मोक्षम, पूतना को किस तरह माता की गति भगवान ने दिया, और कृष्णस्य अद्भुतम आर्भकम, अर्भक की लीला को आर्भक कहा, क्योंकि बाल चेष्टा बाल लीला शुरू में खेलने की आंख बंद करने की और सब, और पूतना की अद्भुत इसलिए कह रहे हैं कि पूतना के विशाल देह पर भी निर्भय बैठे थे और उसको मार दिए, उसका स्तन पिए, अद्भुत लीला है। तो इसको जो सुनता है तो गोविंदे रतिम लभते, गोविंद में तो गोकुलेश्वर में जो ब्रज के राजा हैं गोकुलेंद्र गोविंद उनमें रति प्राप्त करता है, सहज आसक्ति सहज प्रेम प्राप्त करता है, जो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तो यहाँ पर आप लोग सहज समझ गए कि इस कथा के श्रवण की कितनी महिमा है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं सुनने वाले को गोविंद में प्रेम प्राप्त होता है, केवल इसी कथा को, पूतना मोक्षम कृष्णस्य अद्भुतम आर्भकम। अभी तो और बाकी है, एक एक कथा में बल है कृष्ण का प्रेम देने का। कभी कभी बीच में सुखदेव गोस्वामी ऐसी बात कहते जाते हैं, लेकिन कोई विशिष्ट बात होती है तब कहते हैं। इस कथा के द्वारा भगवान में आसक्ति बढ़ती है, उनके कृपा का स्नेह का साक्षात्कार करके, इसीलिए उनमें प्रेम हो जाता है जीव का। हरे कृष्ण जय श्री प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राजोवाच येन येनावतारेण भगवान हरिरीश्वरः करोति कर्ण रम्याणि, कहते हैं अथा, बस इस अंदर ही सुने कि येतन पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकम अद्भुतम श्रृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। कोई भी व्यक्ति मर्त्यः भगवान के इस अद्भुत बाल लीला को, जिसमें उन्होंने पूतना को मातृ गति दिया, इस लीला को सुनता है तो वह गोविंद में प्रेम प्राप्त करता है। जो प्रेम गोविंदे रति श्रवण कीर्तनादि कोटि कोटि साधनों से संपन्न होता है, जो कृष्ण प्रेम सबका फल है, वह महाफल केवल पूतना उद्धार की कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। यह बहुत ही बड़ी बात कह दिया सुखदेव गोस्वामी ने। तो महाराज परीक्षित स्वयं भी इसका अनुभव किए उस कथा को सुनकर, अवश्य कृष्ण में रति हो जाती है इस कथा को सुनकर। तो अपने भीतर वे ऐसा अनुभव कर रहे थे कि भगवान की बाल लीला को, विशेषकर पूतना के उद्धार की कथा को सुनकर उनका चित्त भगवान में और अधिक आविष्ट हो गया, उन्हें कृष्ण रति के सुख की अनुभूति होने लगी। तब उन्होंने सोचा कि कहीं एक ही बाल लीला कहकर सुखदेव गोस्वामी कहीं और अवतारों की कथा न कहने लगे। ये उनको चिंता हुई, ये प्रसंग प्रश्न बता रहा है, अथवा उपोद्घात के रूप में प्रस्तावना के रूप में भी कहीं दूसरी कथा न ला दें, क्योंकि वो बंद करने जा रहे थे अब कथा। लगता है श्रुति फल बता दिए कि इस कथा को सुनने का ये फल है, तो इसका अर्थ है कि अवंत कर रहे हैं। ऐसी शास्त्रों की विशेषता है, जब ये कहा जाता है कि इस कथा के सुनने का यह फल है, तो उसी समय कथा बंद की जाती है। चाहिए तो यह कि जब आप श्रुति फल बता रहे हैं, सुनने की महिमा बता रहे हैं, तो और उसी समय कहिए, और यह होना चाहिए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी श्रुति फल या कीर्तन फल बताकर थोड़ा रुके। तो महाराज परीक्षित कृष्ण चरित उसमें भी तोका चरित, तोक मतलब बच्चा बालक, और आचरित बाल लीला को ही सुनना चाहते थे, इसलिए प्रश्न करते हैं जैन जैन अवतारेण भगवान हरिश्वर भगवान ईश्वर हरि जैन जैन अवतारेण कर्माणि करोति ते कर्माणि कर्ण रम्याणि और मनोज्ञानी च। वे अवतार लीलाएं किसी भी अवतार में भगवान किए हैं सब कान के लिए बहुत सुखद हैं और मन के लिए भी बहुत सुखद। कान के लिए सुखद है शब्द द्वारा और मन के लिए सुखद है अर्थ द्वारा। जो अर्थ का विचार किया जाता है तो मन आनंद में भर जाता है। तो जो भी लीला किए हैं सब कान के लिए सुखद है और मन के लिए सुखद है। आप जरा ध्यान से इस बात पर विचार कीजिए कि जो व्यक्ति सुनना चाहता है बाल लीला वह प्रशंसा करना चालू किया सभी लीलाओं की, इसका आशय क्या है? कि भगवान जिस जिस अवतार में लीला करते हैं सब प्रिय हैं, है इसमें संदेह नहीं है कि कर्ण प्रिय हैं, मनोज्ञ हैं, लेकिन इस अवसर पर जैसे मान लीजिए आपको खाना है खीर और उस समय आप प्रशंसा चालू कीजिए पूरी या और चीज की, इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि मैं जानता हूं कि और सब लीलाएं भगवान की बहुत प्रिय है, जिस अवतार में भी वो जो भी करते हैं कान और मन के लिए बहुत प्रिय है। लेकिन महाराज परीक्षित के कहने का आशय यह था कि भगवान की बहुत लीलाएं हैं। हरीश्वरी जी कहते हैं भगवान का आशय, महाराज परीक्षित का आशय ये था कैसे भगवान की बहुत लीलाएं हैं लेकिन मनुष्य वही सुनता है जो उसके कान को प्रिय लगता है। उनका आशय यह है भगवान के ऐसे अवतार ही अनेक हैं, असंख्य हैं, और एक एक अवतार में लीलाएं असंख्य हैं, तो कोई गिनती नहीं है। सभी कर्ण प्रिय हैं, सब ठीक है, लेकिन मनुष्य वही सुनता है जो उसके कान के लिए प्रिय है और मन के लिए प्रिय है, मन को सुख देने वाला है। तो मैं भी यहां बता रहा हूं कि आप क्या कहिए भगवान की इन समस्त लीलाओं में, जो मेरे कान को और मेरे मन को जो सबसे ठीक लग रहा है मैं बता रहा हूं, वही आप बोलिए। और अभी अभी जो आपने कहा पूतना मोक्ष की कथा, इसी तरह से अन्यत अपि इस तरह से अन्य भी बाल लीलाएं सुनाइए, ये आशय है। हरिश्वरी जी इसके शुरू में कहते हैं सर्वम यद्यपि पापहारि चरितम श्रैषम तथा प्यादरात गायद्वा श्रुणुयात् तदेव सुजनो यत् कर्ण चित्त प्रियम श्रृंगाराद्भुत वीर हास्य जनकम भक्ति प्रधानं च यत् सदेवं बहुधा सयो वनिपते प्रश्नोक्तितो दृश्यते। बहुत आइटम हो खाने के लिए, पूरा स्टोर भरा हो, लेकिन आदमी खाता वही है जो उसको प्रिय है। बहुत अधिक अमाउंट होने से क्या हुआ? तो ये आशय है अवनीपति का, राजा का यह आशय है कि जो कर्ण और मन को प्रिय होता है वही सुनता है। तो उनका भाव यह है कि भगवान के अनेक कथा हैं, तो कोई कथा किसी के लिए प्रिय है, कोई कथा किसी के लिए प्रिय है, समान रूप से सबको प्रिय सब कथा हो, ये बात है नहीं। लेकिन मैं तो इतनी कथा सुना प्रथम स्कंद से द्वितीय स्कंद से लेकर के अब तक, लेकिन हमारे कान और मन को जो प्रिय कथा लगी है वो आज आपने जो चालू किया है वो लगा है। तो अन्य तपि कृष्ण से तोका चरितम अद्भुतम, इस तरह से अन्य भी कथाएं तोका चरितम वही सुनाइए। और मन से चेत यदि आप ऐसा मानते हैं तो भगवान की कथाओं की प्रशंसा करते हुए महाराज परीक्षित कहते हैं जत शृण्वतो पैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्येत शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वदमन्यसे चेत। जिस कथा को सुनने पर, एक तो ये अर्थ है, जिस कथा को सुनने वाले पुरुष की औरति अपायति। औरति के दो अर्थ हैं, मुख्य हैं। रति का अर्थ होता है आनंद, सुख। एक मन में सुख का उदय रहता है किसी किसी व्यक्ति के भीतर, उसको रति कहते हैं। और रति के ठीक विपरीत शब्द है ग्लानि, संस्कृत में मनोग्लानि। मन दुख में रहता है, आनंद का अनुभव नहीं करता है, लेकिन जब व्यक्ति भगवान की कथाएं सुनता है तो मन की अरति चली जाती है, मन में एक अद्भुत अनिर्वचनीय आकस्मिक सुख का उदय होता है। यह अनुभव होता है भक्तों को कभी कभी, भगवान की कथाएं सुनकर उनका कीर्तन करके एक अद्भुत सुख का उदय होता है, जो सुख अन्य वस्तुओं से प्राप्त नहीं होता है। तो मन की जो ग्लानि है वो दूर हो जाती है। ग्लानि क्यों होता है मन में, कि हमको यह वस्तु नहीं है। किसी वस्तु के प्रति महत्व बुद्धि हो जाती है और मन में एक प्रकार की ग्लानि बनी रहती है कि हमको ये चीज नहीं है, वह वस्तु दूसरे के पास है, मेरे पास नहीं है। लेकिन भगवत कथा के बाद जिस सुख की अनुभूति होती है तो व्यक्ति ऐसा मानता है कि ओहो, मैं धन्य हूं, मैं तो सबसे धनी हूं, मैं तो सबसे सुखी हूं। तो उसकी मन की ग्लानि चली जाती है कि हमारे पास संसार का भोग है या नहीं है कोई चिंता नहीं। वो अनुभव करता है कि वास्तव में मैं संसार में सबसे सुखी व्यक्ति हूं, सबसे महत्वपूर्ण वस्तु मैं पाया हूं। तो जब छिणवतः पुंस, भगवत कथा सुनने वाले पुरुष की औरती चली जाती है, उसके मन में जो अभाव की अनुभूति करके एक व्यथा होती है ये चली जाती है। वास्तव में संसार में क्या सुख है, जरा विचार कीजिए। यदि संसार में सुख होता तो महाराज परीक्षित राज्य छोड़ करके ये कथा क्यों सुन रहे हैं गंगा जी के तट पर। और वे अनुभव करके सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि कथा को सुन करके मनोग्लानि चली जाती है कि मैं दरिद्र हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, या मेरे मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है, मुझे संसार में ये चाहिए वो चाहिए। और उसके न मिलने पर जिस अभाव के कारण मनोव्यथा होती है वो कथा सुनने से दूर हो जाती है। निश्चित बहुत बड़ा धन मिलता है। हमने तो सुना है भक्तों का अनुमोदन और रियलाइजेशन भागवत सप्ताह के बाद वे कितना अपने को सुखी मानते हैं उस समय, बल्कि भागवत कथा जब खत्म होने लगती है तब औरती चालू होती है। थोड़े काल के दुख अनुभव करते हैं कि जा अब तो बीत रहा है, तो पुण्य हो कहां सोई दिन सोई रात, अब तो ये कथा बीत गई, फिर वही अब अपने अपने घर जाना होगा और वही संसार का सब करना है। तो भगवत कथा सबसे बड़ा धन है, भगवान चैतन्य महाप्रभु इसे पंचम पुरुषार्थ कहे। तो औरती चले जाती है और औरती का एक अर्थ है भगवत कथा में प्रीति का अभाव। कथा सुनने से ही कथा में जो उदासीनता है, मन नहीं लगता है, वो दूर होता है। और अति अपयति, भगवत कथा में जो उत्साह नहीं होता, सुनने की लालसा नहीं होती, वो सुनने पर ही दूर होती है। कैसे, जैसे किसी को पित्त रोग हो जाए तो मिश्री कड़वी लगती है, तिक्त लगती है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर उस मिश्री का सेवन करे तो धीरे धीरे उसका पित्त रोग दूर हो जाता है और मिश्री मीठी लगने लगती है। तो भगवत कथा प्रारंभ में हो सकता है अच्छी न लगे, लेकिन श्रीणवतः पुंस जो व्यक्ति सुनता है आग्रह करके अनुबंध करके तो उसकी औरती चली जाती है। कभी कभी देखा जाता है कुछ भक्तों में इस तरह की औरती दिखाई देती है, मन नहीं लगता, कथा में सो भी जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन अगर हठ करके अनुबंध करके वे कथा में उपस्थित हों और बीच बीच में भी कभी कभी सुना करें तो उनकी औरती चली जाएगी। औरती अपायती, उपेत और अपेत शब्द, यहां अपेती, अप एति, अप मतलब दूर, एति में चले जाते। उपएति का अर्थ होता है आना, आती का अर्थ दूर होता है संस्कृत में। जैसे मान, तो मान से बिल्कुल विपरीत चीज क्या हो गया, अपमान। और ये दूर हो गए, दूर करते हैं तो अपैति, अपएति, अरति दूर हो जाती है। भगवान के कथा में प्रेम बढ़ जाता है सुनने वाले का, और उसके मन में किसी भी अभाव की अनुभूति कभी उदित नहीं होती है, क्योंकि कथा का जो सुख है, श्रवण का जो सुख है, संसार के ब्रह्मलोक पर्यंत के भोगों की बात तो है ही नहीं, मुक्ति के सुख को भी तिरस्कृत करता है। जैसे ध्रुव महाराज ने कहा है कि या निर्वृतिर, कैसे है वो, कि हे भगवान या निर्वृतिर तव पाद पद्म ध्यान भवज्जन कथा श्रवणे निवास्य, कि हे प्रभु जो निर्वृत्ति, जो सुख है आपके चरण कमलों का दर्शन करके, ध्यान करके होता है, और आपकी कथा सुन करके, आपके भक्तों की कथा सुन करके जो सुख प्राप्त होता है, वह तो सुख ब्रह्म में भी नहीं है। फिर काल के द्वारा जो नष्ट कर दिए जाएंगे स्वर्गादि लोकों में क्या रखा हुआ है, क्या वहां सुख, बहुत बड़ा सुख प्राप्त होता है। तो अपैति, अरति चली जाती है, और वितृष्णा अपि अपैति, वितृष्णा को साथ में रखा गया है। मन में ग्लानी होती है कि हमारे पास यह नहीं है, तो इस कारण से वितृष्णा होती है, अनेक प्रकार की कामना होती है, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। तो जब ही मन की ग्लानी जाती है तो वितृष्णा भी चली जाती है। जिस व्यक्ति को अकस्मात बहुत बड़ा धन मिल जाए तो छोटी छोटी वस्तुओं की कामना उसकी, छोटे छोटे धन की कामना उसकी उसी समय विदा हो जाएगी। जब भगवत कथा का सुख मिलता है तो संसार के भोगों की जो विविधा तृष्णा है वो भी अपायती, वो भी चली जाती है, और तब हृदय शुद्ध हो जाता है। एक ही साथ होता चलता है, तब मतलब पश्चात नहीं समझना चाहिए। सत्वम च शुद्ध्यति, हृदय शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने का मतलब है कि कहीं भी हृदय के कोने को छान डालिए, कहीं भी एक धूलि का कण नहीं, वासना का, रज का, रजोगुण का नामो निशान नहीं रह जाता, कहीं नहीं रह जाता है। तो क्या पता है कि हृदय शुद्ध हो गया, उसकी पहचान यह है कि हृदय जो है वो श्री कृष्ण के रस को ग्रहण करने में समर्थ हो जाता है, वो तत्काल पकड़ लेता है और हमेशा लगा रहता है कृष्ण के रूप गुण लीला आदि के मनन में ही लगा रहता है, उसी का चाव बना रहता है। तो ये पहचान है हृदय शुद्ध हो गया। गंदगी दूर हो जाना अलग चीज है और शुद्धि होना अलग चीज। यह मत समझिए केवल हृदय की गंदगी दूर हो गई तो बस वो शुद्ध माना जाएगा। इसका अर्थ यह है कि इसमें भगवान की लीला का रस आते 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 हृदय को पुष्ट कर दिया, दूसरे रूप में ढाल दिया, तो वह हृदय कृष्ण रस को ग्रहण करने में समर्थ हो जाता है। ऐसा श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी अर्थ किए, कृष्ण को ग्रहण करने में समर्थ। हृदय में अब कोई दूसरी वासना उगती ही नहीं, बीज ही नहीं रहता तो उगेगी क्या। तो हृदय को शुद्ध करने के लिए चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करने के लिए सबसे बड़ा साधन क्या है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो अरति अपयति, वितृष्णा अपयति, सत्वम च शुद्ध्यति, और तीनों जगह या चारों जगह, पांचों जगह लगेगा अचिरेण, अचिरेण सर्वत्र ज्योज्यम, श्रीपद श्रीधर स्वामी जी कहते ये सर्वत्र लगाना पड़ेगा। और अति अचिरेण अपयति, वितृष्णा अचिरेण अपयति, सत्वम च अचिरेण शुद्ध्यति, हरौ भक्ति अचिरेण भवति, तत्पुरुषे च सख्यम अचिरेण भवति, परंतु कस्य श्रृणवतः पुंसा, सुनने वाले पुरुष को, श्रृणवतः शब्द वर्तमान क्रिया का वाचक, जो सुनता ही रहता है लगातार, तो ये पांच चीजें उसकी तत्काल होती हैं। अचिर, चिर का अर्थ देर, दीर्घ, दीर्घ समय नहीं लगता, बहुत जल्दी हृदय, ये सब पांचों चीजें होती हैं। अरति चली जाती है, वितृष्णा चली जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, हरऊ जो सर्व मनोहर हैं अपने बांसुरी से, अपने पीताम्बर से, अपनी लीलाओं से, मंद मुस्कान से, अपने स्वरूप से, सबके चित्त को, इंद्रियों को जो हर लेते हैं, उनको यहाँ हरि कहा गया। हरि में भक्ति, भक्ति का अर्थ है प्रेमा, भगवान में प्रेम हो जाता है। और तत्पुरुष से, तस्य श्री कृष्णस्य पुरुषे वैष्णवे भक्ते सख्यम भवति, और भगवान के कृष्ण में के जो भक्त है, का जो भक्त है उसके साथ मित्रता होती है, सख्य हो जाता है अपने आप। जिस प्रकार का सख्य अपने परिवार के साथ है, स्वाभाविक संबंध बना हुआ है। आदमी सोचता है परिवार का हमारा आदमी अपना है, ये है वो है, तो इस प्रकार का भाव भगवान के भक्त के साथ होता है, भक्तों में प्रीति हो जाती है। तो तत्पुरुषे च सख्यम भवति इति शेष, तदेव हारम, उसी को तदेव, उसी को कहिए। ऐसे एक भाव यह है महाराज परीक्षित के कहने का अर्थ है कि भगवान जिस जिस अवतार से लीला करते हैं, जो भी लीला करते हैं, उन समस्त लीलाओं को सुनने से पांचों फल होते हैं। लेकिन जत शब्द और तत् जो बता रहा है, तो इसे यह कह रहे हैं कि जिस लीलाओं को, जिन लीलाओं को सुनने से अरति चली जाती है, वितृष्णा चली जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, कृष्ण में प्रेम होता है और उनके भक्तों के साथ सख्य होता है, वह हारम सुनाइए। हारम मतलब हरि का चरित, हार, हरि से हार शब्द बना, हारम। अथवा चक्रवर्ती पाजी कहते हैं, हारवत हृदय धार्यम कृष्ण चरितम, हार की तरह जो हृदय पर धारण किया जाए, जिसको हृदय में बसा लेना चाहिए, वो है हारम। हार को आदमी धारण किए रहता है तो हार, हार जे हारम कहते, हरि का चरित। यदि आप मानते हैं, क्या मानते हैं, एक तो इसका अर्थ है कि यदि आप हमको इसको सुनने का अधिकारी मानते हैं, एक तो भाव यह है, यदि मन्य से, यदि आप हमको मानते हैं कि ये सुनने योग्य है तो सुनाई, अन्यथा यदि आप ये मानते होंगे ये बहुत अंतरंग लीला है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूं, तो कोई बात नहीं है। अथवा एक विनय नरमुक्ति कहते हैं संस्कृत में, विनय नरमुक्ति का, नर्म का अर्थ है मजाक, परिहास, और विनय का अर्थ है नम्रता। नम्र भाव से मजाक कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, ऐसे जीव गोस्वामी पाद जी लिखते हैं। क्या मजाक कर रहे हैं, शिष्य जो है गुरु के साथ कभी कभी परिहास कर सकता है भक्ति में, तो कहते हैं मेरा अनुभव है कि कृष्ण कथा कोई व्यक्ति सुने तो उसकी अरति चली जाती है, वितृष्णा चली जाती है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, हृदय शुद्ध हो जाता है, भगवान में प्रेम बढ़ता है और उनके भक्तों के साथ सख्य बढ़ता है। लेकिन यदि गुरु जी आपको भी अगर ऐसा अनुभव हो तो आप कहिए, तो उनको अनुभव करने की क्या बात है, उनको अनुभव नहीं होता तो ऐसा कहते क्यों। इसका अर्थ ये है, वो एक परिहास में कह रहे हैं कि यदि आपको भी ऐसा अनुभव होता हो कि ये पांच महाफल मिलते हैं कृष्ण कथा सुनने वाले को, तो आप कहिए। इसका अर्थ यह है कि जब मैं दुर्बुद्धि जानता हूं इस बात को, तो आपके लिए तो कहना ही नहीं, भीतरी आशय ये है। हमारे जैसा अल्प बुद्धि व्यक्ति भी इस बात को समझने लगा है कि कृष्ण कथा सुनने वाले को ये पांच लाभ होते हैं, तो आपका तो कहना ही क्या। लेकिन विनय नरमुक्ति इसको कहते हैं कि यदि आपको भी ऐसा अनुभव हो तो आप बताइए, कही। बहुत सुंदर बात है। एक बार एक व्यक्ति हमसे बहुत प्रेम से कहा था, तो कथा के दौरान याद आ गए मुझे, और बड़े स्नेह से मैं अभी भी याद करता हूँ, वो अपने इस्कान का ही भक्त है। तो वो कहा कि महाराज मुझे भगवान का दर्शन जब होगा तो मैं उनसे विनय करूंगा कि आप राधा गोविंद महाराज को भी दर्शन दीजिए। तो मैं तो सुन करके रोमांचित हो गया, मेरे आंख में आंसू आ गया वास्तव। लेकिन वह भक्त निष्ठा किया था कि मुझे 3 लाख रोज नाम जप करना है, ब्रज में रहना है, ऐसे करना है, लेकिन वो एक दिन भी नहीं रहा और एक दिन भी नाम जप नहीं किया 3 लाख। फिर भी जो भी एक बार मन में ये बात उठी थी तो वह तो बेचारा जो कुछ अज्ञान में कहा। लेकिन महाराज परीक्षित ऐसा कह रहे हैं कि मेरा तो ये अनुभव है, यदि आप भी मन से, आपकी भी ऐसी मति हो कि कृष्ण कथा से सब होता है तो बद मन से चेत, यदि आप ऐसा मानते हैं तो बोलिए कहिए बद, और यदि नहीं मानते हैं तब क्या किया जाएगा। लेकिन मतलब कहने का आशय है कि आप अवश्य कहिए, आपका अनुभव हमारे अनुभव से कोटि गुना अधिक, इसलिए आप अवश्य कहिए। और तो मानो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि ठीक है भगवान के चरित्र तो बहुत है, मैं कहां से प्रारंभ करूं। तो अथ शब्द अनंतर के अर्थ में होता है संस्कृत में, अथ शब्द किसी चीज को चालू करने के उपक्रम के अर्थ में होता है, प्रारंभ करते हैं अथवा प्रकरणांतर करते हैं। लेकिन अनंतर अर्थ है, अनंतर का अर्थ है अंतर नहीं, लगातार जो कह रहे थे वही हो जाए, जो चालू किए हैं बस वही चलाइए। क्या चालू किए हैं? कृष्ण सत्व का चरितम, कृष्ण का बाल चरित, बस। अथ शब्द देकर महाराज परीक्षित अपनी उत्कंठा व्यक्त कर रहे हैं, बस बस जो चल रहा था वही धारावाहिक चले। और भी कृष्णस्य परम आकर्षकस्य परमानंद घनस्य तोका चरितम अद्भुतम, उनके अद्भुत मतलब ऐश्वर्य और माधुर्य मिलित, माधुर्य में कभी कभी ऐश्वर्य मिला रहता, उस अद्भुत चरित को कहिए। फिर भी सुखदेव गोस्वामी का प्रश्न हो सकता है, आप भगवान की लीला क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? भगवान मनुष्य जाति का अनुकरण कर रहे हैं, इसको क्यों सुनना चाहते हैं? तो इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। तो जाति मनुरुंधता, भगवान वैसे हैं तो मनुष्य, मनुष्य नहीं है लेकिन मनुष्याकार हैं वे, नर बपू तहार स्वरूप, भगवान का वास्तविक जो स्वरूप है वो नर बपू है, लेकिन नर समाज में वे आते बहुत कम है। अपने धाम में रहते हैं, वहां भी मनुष्यों का समाज है, वहीं रहते हैं, लेकिन मानुषम लोकम आसाद्य, आसाद्य मतलब प्राप्य, जो मनुष्य लोक में आ करके तद जाति मनुष्य जाति को वे अनुरुंधता, अनुरुंधन के दो अर्थ यहाँ है, तो अनुकरण करते हैं मनुष्य जाति के कर्मों का भावों का, लेकिन अनुरुंध का अर्थ होता है आत्मसात करना। मनुष्य जाति में अपनी मनुष्य लीला इसलिए करते हैं कि मनुष्य उनसे प्रेम करे, भगवान ने अपना मनुष्य विग्रह प्रकट करते हैं आत्मसात करने के लिए, ठीक मनुष्य की लीला करते। यदि मनुष्य जाति में अवतार लेकर के भी भगवान भगवान ही रह जाए तब तो मनुष्य दूर भागेंगे उनसे, भगवान से कौन प्रेम करता है? आदमी से तो आदमी प्रेम कर रहा है ना। देखिए संसार में आप पोस्ट ऑफिस से चिट्ठी निकाल कर देखिए कितना चिट्ठी भगवान के पास भेजा गया है, कोई नहीं, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के पास पत्र भेज रहा है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के पास फोन कर रहा है। अच्छा ये रहे कि छोड़िए भाई, भगवान तो अप्राकृत जगत में है, इस जगत में और लोग हैं उनके पास, एक भी मनुष्य क्या एक भी गाय के पास पत्र भेजा, हाथी के पास पत्र भेजा है, या देवताओं के पास भी कभी पत्र भेजा? उनसे कोई न बैठक है, न उठक है, न बैठना, न बातचीत, न कुछ नहीं करना, मनुष्य मनुष्य से प्रेम करता है। इसलिए मनुष्य जाति को आत्मसात करने के लिए, अपनी लीला में शामिल करने के लिए भगवान मनुष्य जाति का अनुकरण कर रहे हैं। वे जैसा करते हैं, जैसे बच्चा बन करके रोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, भगवान भी ऐसे ही किए, या इसलिए कर रहे हैं कि मनुष्य हमसे प्रेम करेगा, सीख जाएगा। तज्जातिम अनुरुंधत। इसलिए मनुष्य भाव का जो अनुकरण करते हुए भगवान ने लीला किया है, मनुष्यों को यही सुनना चाहिए, यही सुनना चाहिए, यही सुनना चाहिए, ये भाव है, क्योंकि ऐसे वो कृष्ण का हो जाएगा। कौन नहीं चाहेगा कृष्ण को पुत्र बनाना, यदि वो ये बाल लीलाओं को सुन ले तो किसके मन में एक बार इच्छा नहीं होगी कि मैं माँ जशोदा की तरह कृष्ण को दूध पिलाऊं। ये एक उत्कंठा हो ही जाती है वास्तव में। या कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेलते हैं, गाते हैं, तो कौन व्यक्ति ऐसा मनुष्य है जो उसको सुन करके और कृष्ण का सखा न बनना चाहे। ये कौन ऐसी स्त्री है जो भगवान के किशोर अवस्था की लीलाओं को सुन करके वह कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में न मानने लगे, यदि ठीक ठीक सुन ले तो। तो महाराज परीक्षित के इस प्रश्न के पीछे बहुत ही सुंदर और गूढ़ रहस्य है। ऐसे बहुत बहुत अवतार में बहुत बहुत लीला करते हैं भगवान, जैसे नृसिंह अवतार में तो मनुष्य की तो लीला किए नहीं, केवल आधा मनुष्य थे, पर लीला किसकी किए, केवल भगवान की लीला किए, मारना काटना ये भगवान की लीला होती रही थी, ऐश्वर्य की। तो प्रेम करने की तो बात दूर रही, जो देवता हमेशा प्रणाम करते थे, पूजा करते थे, वो सब भी भाग चले, कोई निकट नहीं आ रहा, क्योंकि अवतार भी कोई रूटीन बनाकर नहीं हुआ था, स्केड्यूल नहीं था, अकस्मात हो गया। जब जब भगवान का अवतार होता है तो देवता निकट आते हैं, पूजा करते हैं, भगवान का चरण धोते हैं, माला पहनाते हैं, भोग लगाते हैं, लेकिन यह अवतार हुआ तो मनुष्य जाति की तो बात छोड़िए, देवता भी भाग चले क्या कोई प्रेम करेगा। वही भय के अवसर पर नमस्ते नरसिंह हाय कर लेते हैं, लेकिन जो हृदय का प्रेम होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। या मछली बन करके तैर रहे हैं प्रलय समुद्र में, तो अब वहां मनुष्य कौन जाएगा। कुछ मनुष्य बैठे थे नौका पर किसी तरह सुरक्षित, तो खींच रहे थे मनु महाराज बैठे थे और सप्तर्षियों के साथ, तो दूसरे मनुष्य कैसे प्रेम करेगा। मनुष्य तो मनुष्य से प्रेम करेगा। इसी से भगवान अपना पूरा साज बाज लेकर के आए थे, अपने परिकरों को लेकर गोलोक वृंदावन से, अपनी प्रेयसियों को, अपने सखाओं को, अपने माता पिता को, अपनी गौओं को, अपने वृक्षों को, सबको लेकर के यहाँ आए और बिल्कुल मनुष्य जैसी लीला किए कि मनुष्य उनसे प्रेम करेगा। पर बहुत दुख की बात है कि मनुष्य भगवान की इन लीलाओं को पढ़ता है न सुनता है। तो महाराज परीक्षित इस आशय को व्यक्त कर रहे हैं कि मानुषम लोक मासद तज जाति मनोरंधत। तज जाति मतलब मनुष्य जाति, मनुष्य जाति को आत्मसात करने के लिए, अपना बनाने के लिए, अपने प्रति आकर्षित करने के लिए मनुष्य भाव का अनुकरण कर रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी तुरंत ही समझ गए इनके मनोभाव को, इसलिए उनके प्रश्न का अभिनंदन आदि भी नहीं किए, सीधे कृष्ण कथा कहना चालू किए। इतना प्रभावित हुए प्रश्न को सुनकर उन्हें कहा हो, तो अब अनुमोदन भी नहीं किए कुछ नहीं, तो चालू करते हैं। कदा श्री शुक उवाच कदा चिदौत्थानिक कौतुकाप्लवे जन्मर्क्ष योगे समवेत योषिताम वादित्र गीत द्विज मंत्र वाचक चकार सुनो रभिसेचनम सती। सती यशोदा समस्त कर्मों में निपुणा, सती का अर्थ है यशोदा जी अपने पुत्र के उत्सव मनाने में, उसकी सेवा करने में, सभी कामों में परम दक्ष थी, इसलिए यहाँ सती शब्द का प्रयोग किया गया। वो हमेशा तिथि दिखवाया करती थी पंडितों से कि मेरा बच्चा कितना दिन का हुआ, कौन शुभ लग्न आ रहा है, किस दिन क्या करना चाहिए, किस दिन क्या करना चाहिए, इसलिए यहाँ इनको सती कहा गया। तो कदाचित किसी समय, हाँ, यही सुखदेव गोस्वामी बोले हैं, नहीं ब्रह्मा जी बोले हैं द्वितीय स्कंध में कि त्रैमासिकस्य च पदा सकटोपवृत्तः। जब 3 मास के कृष्ण थे तो पैर से उन्होंने सकट को अपवृत कर दिया, पलट दिया था। तो कदाचित का अर्थ यहाँ ये है कि जब कृष्ण त्रैमासिक थे, 3 महीने के थे, त्रैमासिक बालक, 3 महीने के बालक थे, और 3 महीने से यहाँ तात्पर्य है 100 दिन, 100 दिन के कृष्ण थे, ठीक 100वां दिन पूरा हुआ था कृष्ण का। तो ये लीला है। तो औथानिक कौतुकाप्लवित, उस दिन वे उत्थान किए। उत्थान का अर्थ होता है अंग परिवर्तन किए। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो कुछ दिनों तक तो आप जैसे रख दीजिए वैसे ही पड़े रहते हैं। तो प्राय माताएं उनको उत्थान लेटा करके रख देती हैं एक बाल पर्यंक पर। पुरुषों के सोने के लिए बड़े बड़े पलंग होते हैं, लेकिन बच्चों के साइज के अनुसार ही छोटे छोटे पलंग होते हैं, और उस पर आस्तरण बिछा रहता है, आस्तरण, उसको साफ करती रहती है माता जी, लेकिन कोमल रहता है। आजकल तो प्लास्टिक बिछा देते हैं कि अगर वो पेशाब करे, शौच करे तो आसानी से साफ किया जा सके। इस तरह से लेटाए गए थे कृष्ण, लेकिन अकस्मात जब 100 दिन के थे तो करवट बदले। तो करवट बदलने का मतलब ये था अंग परिवर्तन का, कि बच्चा का प्रत्येक अंग बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, तब तो करवट बदल लिया। ये बैठने की चेष्टा कर रहा है, ये अर्थ है। तो माँ को बहुत खुशी हुई इससे। तो औथानिक कौतुक आप्लवे, औथानिक कौतुक, कौतुक अर्थ है उत्सव। बच्चा आज अंग परिवर्तन किया है, उठने की चेष्टा किया है, तो बहुत ही खुशी हुई। और माता जसोदा ने एक उत्सव मनाया। इसमें माँ जसोदा को प्रधान रखा गया है, नंद बाबा को पीछे रखा गया है। नंद बाबा थे, लेकिन यह उत्सव जो है वो स्त्रियां करती हैं, इसीलिए जसोदा जी के बारे में वर्णन है, वो कर रही है। जन्मवृक्ष जोगे समवेत जोशिता, और जब करवट बदले तो उसी नक्षत्र में जिस नक्षत्र में कृष्ण का जन्म हुआ था, रोहिणी नक्षत्र उसमें चल रहा था, तो और खुशी की बात थी। ब्राह्मणों से पूछा गया तो ब्राह्मणों ने कहा कि तो और शुभ मंगल, बच्चे का शरीर बिल्कुल स्वस्थ होगा, सारे अंग ठीक हैं। तब बादित्र गीता द्विजमंत्र वाचक ही बाजे मंगाए गए, बजाने वाले जो प्रोफेशनल थे या प्रेम से जो भी रखे थे, बाजा लेकर आ गए। बाजा बज रहा था, गीत गा रही थी स्त्रियां, और द्विज मंत्र वाचक ही, द्विज जुटे थे और मंत्र वाचक ही, अथवा द्विज मंत्र वाचक ही, ब्राह्मण जो मंत्र का वाचन कर रहे थे, वो बोल रहे थे वेद के मंत्र। इन सबके द्वारा वह सती सर्व कार्य निपुणा यशोदा सूनो पुत्रस्य अभिषेचनम चकार। एक ही पुत्र था, एक लौता पुत्र, और वो भी बहुत दिन के बाद जन्म लिया था, इसलिए उसके उत्सव में बहुत आनंद आ रहा था। सूनो अभिषेचनम, सेचनम न कहकर अभिषेचनम कहते हैं, बहुत सुंदर अभिषेक किया, सेचन किया। उस दिन बच्चे को नहलवाया गया, अभिषेक किया गया। 100 दिन के जब कृष्ण हुए तो उनका अभिषेक हो रहा था। और उस समय क्या हुआ, कुछ माँ जसोदा कृष्ण के कारण ऐसा अनुभव कर रहे थे कि यदि ये जगा रहेगा तो मैं घर में आए हुए स्त्रियों का स्वागत कैसे करूंगी, किसी को कुछ खिलाना पिलाना लेना देना ये बात करना है। तो माँ जसोदा ने सोचा कि इस बच्चे को सुलाना चाहिए। अब बताएं, जिसके घर में कृष्ण के लिए उत्सव है उसी को कहीं कोने में फेंकना चाहती है, सुलाना चाहती है। हरीश जी इस बात पर कहे है कि जिसके लिए उत्सव हो रहा है और उसकी आंख बंद करके सुलाया जा रहा है कि तुम सोए रहो, तो उत्सव का क्या मतलब हुआ। तो नंदस से पत्नी कृत मज्जन आदि कम, जब कृष्ण का मज्जन आदि हो गया, अभिषेक हुआ, मज्जन आदि, आदि का मतलब है गुरोचन तिलक देना या काजल लगाना आंख में या और भी झिंगुली आदि वस्त्र पहनाना। बच्चा होता है तो बच्चों के वस्त्र भी होते हैं छोटे छोटे, ये सब पहना करके सजा करके उलाई। तो ब्राह्मणों ने कृत स्वस्थ है नम, बच्चे के ऊपर अक्षत डालना और क्या कहते हैं उसको, जो पानी छिड़का जाता है, पानी छिड़क छिड़क करके पत्ता से वो मंत्र बोल रहे थे, बच्चे की रक्षा कर रहे थे। अच्छा ठीक है, माता को चाहिए था कि सब करा रही है तो दूध पिला कर सुलावे, लेकिन माता ने इतनी उत्सुकता दिखाई, वो इतनी उत्सुक थी उस अवसर पर कि बच्चे को दूध पिलाई नहीं, दूध नहीं पिलाई और सब स्वस्ति वाचन हुआ, सब हुआ, बड़ा उत्सव चल रहा था, इन सब कार्यों में देर हो रही थी। तो पहले ब्राह्मणों की पूजा की गई, ब्राह्मणों की किस तरह से पूजा की गई, अन्याद्य वास सर्गभिष्ट धेनु भी, अन्न आदि, आदि मतलब उसमें घी आदि सब, अन्न अन्न खिला रही हैं तो घी खूब परसा जा रहा है, अच्छा अचार वगैरह ये सब ब्राह्मणों को खिलाया जा रहा था, और उनको जो अभीष्ट है जैसे गाय वगैरह दान दिया जा रहा था। तो जब ब्राह्मण पूजित हुए तब बच्चे का स्वस्ति स्वस्ति वाचन किए। ऐसा नियम है कि ब्राह्मणों को खिलाकर काम कराना चाहिए और शूद्रों से काम कराकर खिलाना चाहिए उनको, नहीं तो खा लेंगे तो करेंगे नहीं। ऐसा एक व्यक्ति बता रहे थे। और ब्राह्मण जब खा लेते हैं तो बहुत आशीर्वाद देते हैं, वो काम करते, जितना काम कराइए करते रहते, भूख लगने पर तो भूखा साधु बाघ बराबर, भूखा ब्राह्मण और साधु बाघ जैसे होते हैं, भूख में कुछ करना नहीं चाहते। और दूसरे जो छोटे लोग होते हैं भूख के कारण काम करते हैं, भूख नहीं रहे तो करेंगे ही नहीं, और ब्राह्मण भूख के कारण नहीं काम करते। ये दोनों बात है। तो यहां लिखा गया सुपूजित ही ब्राह्मण कृत स्वस्थ है, ब्राह्मण जब पूजित हुए, सुपूजित खूब अच्छी पूजा की गई तो बच्चे का स्वस्ति वाचन किए खूब अच्छा से। ये अर्थ नहीं समझना चाहिए कि ब्रज के ब्राह्मण भी अपेक्षा करते थे, ये माँ की ओर से है कि माँ इतना श्रद्धालु थी ब्राह्मणों में कि उसने पूजा किया खूब। यदि ब्राह्मण पहले ही करना चाहते थे स्वस्ति वाचन, लेकिन माँ ने कहा कि नहीं पंडित जी सब खा पी लीजिए आनंद से, और इसके बाद खूब अच्छा आशीर्वाद देना है न, तो किए। तो कृष्ण को निद्रा आने लगी, निद्राक्षम संजात निद्राक्ष, कृष्ण के आंख में झपकी आने लगी, नींद आने लगी, जो उनका स्वस्ति वाचन किया जा रहा था नींद आने लगी। हरीश्वर जी कहते हैं कि निद्रा एक देवी स्त्री है, उसने सोचा कि ब्रज की स्त्रियां इतना आनंद में हैं, सुख लूट रही हैं, तो मैं कब सुख लूटूंगी, तो वो भी कृष्ण के आंख पर बैठ गई कि मैं भी अब सुख लूटूंगी, निद्रा ने सोचा। तो निद्रा कृष्ण के आंखों पर आ गई, शायद यही सोचकर वो आ गई होगी निद्राक्षम, नहीं तो इस तरह के शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, कह दिया जाता कि वे सोने लगे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अक्ष पर निद्रा आ गई, आंख पर निद्रा आ गई, निद्रा पहले आंख पर ही आती है ना, आंख पर आ गई। तो मां ने देखा कि ये सो रहा है, और पहले भी चाहती थी कि सो जाए, तो असी से अच्छा नहीं तो गई, लेकिन कहां सुलाऊं इसको, तो पहले तो थपथपा रही थी गोद में लेकर के कि सो जाए सो जाए, जब गोद में सो गया तो बड़े सनई बड़े बारीकी से वो गई, देखने लगी स्थान कहां सुलाऊं। तो सारे घर में तो लोग भरे थे, इधर प्रसाद रखा है उधर ये रखा है, उत्सव चल रहा है गीत हो रहा है, बच्चे को सुलावे कहां, तो आंगन से बाहर गई जहां बैल गाड़ी खड़ी की गई थी, छकड़ा शेड था, शेड बनाया गया था ऊंचा और उसी में वो छकड़ा खड़ा शकट खड़ा किया गया। तो देखी कि इसके नीचे काफी जगह है, और वहीं पर वो बाल पर्यंक ले जाकर जिस पर कृष्ण सोते थे ले जाकर बिछाई। तो पहले मां यशोदा ने क्या किया, दूसरे पलंग पर वो स्वयं ही सो करके और कृष्ण को सुलाने लगे। बच्चे को सुलाती हैं माताएं इस तरह से, ये प्रतिदिन का देखा हुआ दृश्य, पहले वो नाटक करती हैं, स्वयं ही सो जाती हैं झूठ मूठ जिससे कि बच्चा सो जाए, और दूध पिलाते पिलाते गोद में रह करके वो सो जाता है, देखती हैं कि अब सो गया, तो धीरे से उसको रख करके घर का काम धंधा कर। करते हैं। तो माँ यशोदा भी ऐसे कर रहे थे, और कभी कभी बच्चे ऐसा करते हैं जब ही माँ उठती है तो भी वो भी क्या क्या करके उठने लगते हैं, तो फिर सुलाती है अभी जग गए। तो कृष्ण भी ऐसे कर रहे थे, माँ यशोदा जब उठना चाहते थे तो लगता था कि फिर जग जाएगा। इसलिए समय ही यहाँ शब्द सुखदेव गोस्वामी कहते, पहले सो गई, इसके बाद थपकी दे करके सुला उला करके, और सो रहा था तो दूध पीने का प्रश्न ही नहीं था, दूध पिलाने पर तो जग जाता, इसलिए दूध नहीं पिलाई, सुला दी बैलगाड़ी के नीचे। विशाल सकट था बैलगाड़ी, और उस पर बहुत बड़े बड़े बर्तन रखे गए थे, सोना और चांदी के बर्तन उस पर नहीं रखे गए थे, क्योंकि घर के बाहर वो रह रहा था। सोना और चांदी के अतिरिक्त जो भी बर्तन होते हैं उनको कुप्य कहते हैं, तांबा के या और सबके, पीतल के बर्तन या मिट्टी के और सब रखे हुए थे, उनमें विविध गोरस भरे थे। गोरस का अर्थ है दूध, नहीं गोरस का खास अर्थ वहां घी से है, घी रखे गए थे सब भर भर करके, या दही सजा करके रखा गया था कि अभी फेस्टिवल में काम आएगा। सारा दही और घी बिखर गया, ऐसे और भी जगह पड़ा हुआ था, केवल उतना ही नहीं था वहां। तो कृष्ण को सुला दिया, उधर सुलाया, इधर उस उत्सव में काम करने लगी। औथानिकोत्सुक मना मनस्विनी समागतान पूजयति ब्रजौकसा, अपने घर में आए हुए ब्रजवासियों का पूजन कर रही थी। नंद बाबा पुरुषों का स्वागत कर रहे थे, वो स्त्रियों का कर रहे थे, तो स्वागत चल रहा था, और उधर बच्चा रोना चालू किया, जग गया तुरंत। लेकिन माँ इतना व्यस्त थी कि नैव श्रृणोत, तो सुनी नहीं बच्चे का रोना, इतना उसका मन अभिनिविष्ट था उत्सव में। पूजयत, खास करके ब्रजवासियों का स्वागत करना, कोई खाए बिना न रह जाए, कोई दान बिना न रह जाए, सबको लेना देना। सुखदेव गोस्वामी शपथ खाकर महाराज परीक्षित से कहते हैं, महाराज परीक्षित मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि कृष्ण के रोने की आवाज माता यशोदा सुनी नहीं, न ये वह अश्रृणोत, सुनी नहीं, और ये रो रहे थे। क्यों? अस्तनार्थी, भगवान के लिए शब्द का प्रयोग किया गया, माता यशोदा के अस्तन के अर्थी थे। अस्तनार्थी मतलब दूध पीने के लिए रो रहे थे, बहुत भूख लग गई थी, और रो रहे थे, लेकिन नहीं सुनी। जब भगवान ने देखा कि बिल्कुल नहीं सुनी, तब अपने दोनों चरणों को ऊपर उछाल उछाल कर रोने लगे। लड़के जब भूख में रोते हैं तो व्याकुल होकर तो पैर को ऐसे कर कर के रोने लगते हैं। तो पहले वैसे नहीं रोए, पहले धीमे स्वर में ये करके रोना चालू किए, तो वो कहे को सुनने जाए। ऐसे माँ यशोदा ने कुछ बच्चों को लगा दिया था कि देखना यहाँ पर कोई कुत्ता न आवे, बिल्ली न आवे, माछी न बैठने पावे कृष्ण पर। तो बच्चे सब चारों ओर से घेर करके थे, वो देखते रहते थे, और माँ ने कहा था कि तुम लोग यहाँ देखते रहना। तो वो रो रहा था तो वे लोग भी जाकर माँ से नहीं कहे, शायद माँ ने कह दिया होगा कि तुम लोग देखना और हमको डिस्टर्ब मत करना, हमको उद्वेग मत देना, मैं दूसरे काम में हूं। तो बच्चे सुने रोने की आवाज, तो चाहिए था कि एक बच्चा जाकर कह दे कि वो रो रहा है, तो सारा काम छोड़ करके वो आ गई होती, लेकिन कोई कहा नहीं, और बच्चा खूब रो रहा था। तो पैर को उछालने लगा, उदक छिपन, छिपन का अर्थ है चलाना, और उद का अर्थ है ऊपर की ओर चला रहा था। ऊपर पैर चलाते चलाते क्या हुआ, जिस सकट के नीचे वे सोए थे, उस सकट को ऐसे पैर उछालते हुए रोते 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 कोमल चरण से हल्का टच कर दी। इतनी वो ऊंचा था, लेकिन जैसे दीपक का लौ अकस्मात ऊपर बढ़ जाए, ऐसे वो छोटा सा अल्पकह छोटा पैर और कोमल, किसी कोमल पत्ते से भी अधिक सुकुमार, कमल का पत्ता होता है उसमें सुकुमार था, और उससे मार दिया। और तब तक तो वो छकड़ा उलट करके धड़धड़ गिर गया वहीं पर, और इतनी जोर की आवाज हुई कि उत्सव तो उसी समय बंद हो गया। सब लोग दौड़े, क्या हो गया, कोई छत गिर गया, घर गिर गया, क्या हुआ, जो खा रहे थे वे भी बिना मुंह धोए उठ करके खड़े हो गए, चले क्या हुआ, अब कोई दूसरा काम नहीं हो रहा था, ये इतना रो रहा है बेचारा और कोई ध्यान नहीं दे रहा, अब सब ध्यान आ गया। सारा उत्सव बंद हो गया, खाना पीना लेना देना गाना बजाना जो हो रहा था सब सन एकदम, सब दौड़े क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। देखिए भगवान की मधुरता, ये चरणों से मारे, क्या कोई खड़े बैलगाड़ी को और ट्रक को अपने चरण से मारेगा? मारने पर चरण ही खत्म हो जाएगा। जाकर किसी लोहा पर मारिए ठोकर और उसको इधर उधर करने के लिए कुछ नहीं होगा, चरण खराब हो जाएगा। लेकिन भगवान ने ऐसे बहुत जोर से मारा नहीं, वो ये नहीं दिखाया कि मार रहे हैं, परंतु बच्चों ने देखा कि पैर उछालते उछालते जब ही इसके पैर का टच हुआ तब ही उलट गया। तो बच्चे सब कृष्ण के साथ थे, तो बैल गाड़ी जो उलटी पलटी तो वो बहुत दूर में फेंका ऐसे बच्चों से दूर, और घड़े फूट गए। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं विध्वस्त नाना रसकुप्य भाजन, वो तो उल्टा गिर गया और जितने बर्तन थे रस के गोरस के वो सब टूट गए, बह गया गोरस। हरिश्री जी कहते हैं भगवान ने सोचा कि मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवान हूं और हमारे ऊपर इंद्रियों का रस रहेगा। गोरस, गो माने इंद्रियां, मैं तो अधोक्षज हूं, इंद्रियों से परे हूं, और ये इंद्रियों का रस आकर हमारे ऊपर रहेगा, इसलिए उन्होंने क्रोध से मार दिया कि हमसे हमेशा नीचे रहो, हमसे ऊपर नहीं हो सकते। गोरस के ऊपर रहेगा, इस तरह से उन्होंने मार दिया। और भगवान ने यह भी सोचा कि हमारे ऊपर रस है, तो रसो वही सभ्य तो कहता है कि मैं रस हूं, सबसे बड़ा मैं रस हूं, तो मेरे ऊपर रस कौन आ गया? इसलिए उन्होंने सोचा कि मेरे ऊपर कोई रस नहीं है, परम रस तो मैं हूं और सब रस भरा हुआ था ऊपर, गोरस भरा हुआ था, इसलिए भगवान ने पलट दिया। तो विध्वस्त नाना रसकुप्य भाजनम, नाना रसकुप्यत, सब विध्वस्त हो गए, बर्तन फूट गए, रस बह गया, और व्यत्यस्त चक्राक्षत, चक्का दोनों टूट गए गाड़ी के, विध्वस्त चक्र विध्वस्त अक्ष, धुरा टूट गया, धुरी टूट गया, विभिन्न कुबरम जुगंधर जो बड़ी लकड़ी होती है गाड़ी के दोनों तरफ बंधी होती, वो भी टूट गया, खत्म। गाड़ी टूट गई, चक्का टूट गया और बर्तन सब फूट गए, रस सब बह गया। आवाज इतने जोर की हुई कि दृष्ट्वा जशोदा प्रमुखा ब्रजस्त्री औथानिके कर्मणिया समागता नंदा दयश्चाद्भुत दर्शनाकुला कथम स्वयं सक्षम विवर्जित। तो जशोदा प्रमुख सारी स्त्रियां और नंद आदि सब गोप, जब जशोदा और नंद आ गए तो सारा काम रुक गया, सब लोग आए और यही बात होने लगी, चारों तरफ मनुष्य भरे हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, और यही बात हो रही, कथम स्वयं सकटम भी पड़ जाएगा, ये अपनी आप सकट कैसे पलट गया, ये क्या हुआ? कुछ लोग कहते थे कोई दैत्य किया है, कोई ग्रह बाधा चल रही है, स्थान बुरा है, स्थान लग रहा है, कुछ हो रहा है, कोई कुछ रहा, क्या हुआ? धक धक कलेजा करने लगा सबका, कोई कहने लगा वो बच्चा कहाँ है, बच्चा कैसे है? माँ जशोदा ने तो बच्चा को ले लिया जाकर तुरंत, पर अपनी भूल पर पछताने लगी कि मैं क्यों इसको यहाँ सुलाई थी। तो इस प्रकार सब लोग यही बात कर रहे थे, कैसे पलट गया, कैसे पलट गया, बहुत आश्चर्य की बात। मान लीजिए पार्किंग में एक बहुत बड़ा ट्रक खड़ा किया गया हो और कोई धक्का नहीं मारा, कोई आंधी नहीं, कुछ नहीं, और अपने आप उल्टा पलट जाए, एक बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा, नहीं क्या हुआ? और यही दुर्घटना अच्छी मानी जाएगी, कम से कम कोई बच्चा मरा नहीं, दबा नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो आवाज के कारण और उस उल्टा सकट के कारण सब लोग जुट गए, बातचीत करने लगे। तो बातचीत कर रहे थे यही, कैसे उल्टा, क्या हुआ, क्या बात है, क्या बात है। तो जो बच्चे वहां कृष्ण की रक्षा कर रहे थे, उन्होंने देखा अव्यवस्थित मतिन कि गोप और गोपी कुछ निर्णय नहीं कर रहे हैं कि कैसे पलटा है, उनका मन बड़ा बेचैन हो रहा था, कल्पना कर रहे थे कि कहीं केवल इतने ही भूखंड में भूकंप तो नहीं आया, उतने छोटी सी जगह में भूकंप कैसे आएगा? या कोई असुर आकर के उल्टा करके तो नहीं भाग गया? कोई दैत्य भी अकस्मात आकर के पलट गया होगा, या कोई ग्रह पलट दिया, क्या हुआ? बड़े व्याकुल थे। तो बच्चे वहां क्या कहे, रुदता नैन पादेन क्षिप्तम, रुदता अनेन, दिखा कर कह रहे हैं कि ये जो रो रहा था, ये रोते रोते इसने पैर से इसको पलटा है। तो लोगों ने कहा, अरे क्या बोल रहे हो, छोटा सा बच्चा और रोते रोते पैर से उल्टा के? तो कहते, न संशय, आप लोग संशय मत कीजिए, निःसंशय कृष्ण कथा बोल रहे हैं। वास्तव में बच्चे बच्चे कृष्ण कथा देखे हैं, साक्षात आंख से कृष्ण ने पलटा है, वे बोल रहे हैं। लेकिन नते श्रद्धा धीरे गोप बाल भाषित में था, लेकिन कोई भी गोप न श्रद्धा धीरे, श्रद्धा नहीं किए, माने नहीं। उन्होंने कहा कि बाल भाषित है, बच्चे बोल रहे हैं। बच्चे बोल, बच्चा हो चाहे कोई, जो सच्चा कृष्ण कथा कह रहा है तो क्यों नहीं मानना चाहिए? हरिश्वरी जी कहते, देखिए ये बच्चा कृष्ण तत्व का ज्ञाता होगा तो नहीं मानोगे? और लोग तो उत्सव में थे, बच्चे कृष्ण को नहीं देख रहे थे, बच्चे तो साक्षात दर्शन कर रहे थे, उन्होंने देखा कि चरण बढ़ाया और यही पलट दिया, वो सांच बोल रहे थे। लेकिन सांच बोलने वाले वहां सबसे मूर्ख कहे जा रहे थे, जो बेचारे कृष्ण कथा इतनी फर्स्ट क्लास की कह रहे थे कि इसने पलटा है, और ये भी कह रहे न संशय, इसमें संशय नहीं है, तो उसको कहते हैं बाल भाषित। ये मूर्ख की बात, बाल माने बच्चा, ये बच्चे है ये क्या जानते हैं, चुप रहो। उन लोगों को डांट दिए, बच्चों ने तो कहा कि हम तो देखे हैं, देखे क्या हो, देखने से क्या होता है? देखे होते अभी दो दिन के नदान लड़के देख लिए, वो लोग तो चिंता में मर रहे थे, कोई भूत पटका क्या किया, और बच्चे सही बात बोल रहे थे तो उनका तिरस्कार किया जा रहा था, बताइए। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गोपा, आखिर गोप है, गाय के साथ रहने वाले गाय जैसी बुद्धि वाले नहीं होंगे तो क्या होंगे? इस संसार में आज भी देखा जाता है कि सबसे भोली भाली जाति के कोई लोग हैं तो गोप है, बेचारे गाय के साथ रहते हैं, गाय जैसा सीधा साधा स्वभाव होता है। तो नस्ते श्रद्धा धीरे गोपा, इस पर वे गोप गाय का पालन करने वाले, गाय के साथ जिंदगी बिताने वाले, वे क्या जानेंगे कृष्ण को? तो वे बच्चों की बात पर विश्वास नहीं किए, क्यों? कि बाल भाषित। फिर बाद में अब फिर स्वस्ति वाचन कराया गया बच्चे का, फिर और अब गाड़ी की पूजा कराने लगी माँ जसोदा, जो छकड़ा उलट गया था। तो फिर ब्राह्मण लोग जूते, अक्षत, दही, पल्लव, आम का पत्ता लेकर, केले का पत्ता लेकर, पानी लेकर के फिर पूजा करने लगे कि कोई देवता जब विश्वकर्मा जी प्रसन्न हो जाए, चाहे कोई और प्रसन्न हो जाए, भगवान नारायण प्रसन्न हो जाए। लगा कि हम लोगों ने पूजा नहीं किया था इसीलिए सब हो गया, तो फिर पूजा चालू होने लगी। और अभी भी भगवान कृष्ण भूखे हैं, ये नहीं कि माँ जसोदा दूध पिलाने लगे। तो जो लिखा रहता है किसी कर्म में वो होता है, आप रोइए चाहे कुछ भी कीजिए, जब भोजन होना है तभी होता है। तो श्री कृष्ण तो छकड़ा उलटे पलट दिए कि जल्दी भोजन मिलेगा, लेकिन उलटने के बाद और सब बात होने लगी, पूजा होने लगी, होने लगी, आखिर बहुत देरी के बाद ही माँ जसोदा ने पिलाए। हरिश्वरी जी कहते हैं कि कोई ये शिक्षा देते हैं, भगवान इस लीला द्वारा ये शिक्षा देते हैं कि भैया कोई कुछ भी जबरदस्ती करे, जल्दी करे, जल्दी करे, लेकिन जब लिखा है कोई चीज मिलना तभी मिलता है, आपके रोने से और छकड़ा उलटने से क्या होगा? छकट उल्टा तो माता जसोदा पूजा कराने लगी, पिलाई नहीं, जब पूजा हो गई तब जाकर पिलाई, पिलाई फिर स्वस्ति वाचन, फिर ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेना। तो ब्राह्मणों के द्वारा आशीर्वाद की बड़ी प्रशंसा की गई, माता ने आशीर्वाद दिलवाया, ये दिलवाया, फिर पिलाया, स्तन खूब अच्छा से पिला करके तब स्वस्थ किया। ये सकट भंजन लीला। तो आज श्रील लोकनाथ महाराज जी जाने वाले हैं, तो मैं उनसे आग्रह कर कहिए।